My Cousin Rachel by Daphne du Maurier. Tehreer aur Peshkash Sayyed Irfan Ali. www.server555.com.
जिंदगी मेरे साथ मजाक करती है, मैं रोता हूँ वो हंसती है। जिससे भी मैंने मोहब्बत की उसे मुझसे जुदा कर दिया गया। 18 माह की उम्र में मेरे वालदैन मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और मैं एम्ब्रोज एशले के पास आ गया। वो मुझसे 20 साल बड़े थे, निहायत अमीर और शरीफ खानदानी इंसान, बहुत बड़ी जायदाद के मालिक। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत मिली जो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वो मेरे माँ बाप थे, दोस्त थे, भाई थे, सरपरस्त थे। मुख्तसर ये कि वो मेरी कुल कायनात थे। जितनी मैं उनसे मोहब्बत करता था वो उससे ज्यादा मुझे चाहते। हमारी हवेली समंदर के करीब वाक़े थी, जिसके इर्द गिर्द हमारी ज़मीनें थीं जहाँ मुलाजिम फसलें उगाते। एम्ब्रोस की उम्र 40 साल हो रही थी मगर शादी नहीं की थी। हवेली में कोई औरत ना थी, सिर्फ किताबें, तस्वीरें और बाहर बाग में शानदार पौधे। यही एम्ब्रोस का शौक था। एम्ब्रोस की आदत बहुत ही अच्छी थी, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि हर मिलने वाले के साथ मुखलिस। मैं एम्ब्रोस की सोच से मुतासिर था और सोचता था मैं भी उनकी तरह कभी शादी नहीं करूँगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्यारे घर में खुश थे, देर तक आपस में बातें करते और हंसते। कभी भी तसव्वुर ना किया कि हम जुदा भी हो सकते हैं। मैं 25 साल की उम्र में जब ये लिख रहा हूँ तो मेरी कायनात, मेरे प्यारे एम्ब्रोस मर चुके हैं। ना सिर्फ वो बल्कि वो औरत भी अब इस दुनिया में नहीं जिससे मैंने कभी मोहब्बत की, मेरी कज़न रेचल। मगर वो लोग कैसे मरे? क्या मेरे प्यारे एम्ब्रोस को मेरी कज़न रेचल ने मारा था? और क्या अपनी प्यारी कज़न रेचल की मौत में मेरा हाथ है? एम्ब्रोस 40 साल की उम्र में ही बुढ़ापा महसूस करने लगा था। वजह उसका बीमार रहना था। डॉक्टर कहते थे ठंडे इलाके से दूर किसी पुरफजा मकाम पर जाने से सेहत बेहतर हो सकती है। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो माहौल की तब्दीली और सेहत के लिए इटली जा रहे हैं। मैंने जिद की कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे वारिस हो, मेरे बाद तमाम जायदाद के मालिक। तुम यहाँ रुकोगे और इन सब चीज़ों की देखभाल करोगे। मैं इटली के खूबसूरत बागात देखूंगा और वापसी पर वहाँ के शानदार पौधे लाऊंगा। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनके साथ जाऊं मगर वो ना माने और चले गए। इटली से उनके खत आते रहे। मैं उन्हें एहतियात से अपने पास रखता और जब भी तन्हाई महसूस करता पढ़कर एम्ब्रोस को अपने पास महसूस करता। फिर एक खत में उन्होंने अपनी कज़न रेचल का तस्करा किया। वो दूर से हमारी रिश्तेदार भी थीं, कम उम्री में शादी हुई थी मगर अब अकेली थीं। कुछ अरसे एम्ब्रोस के खत ना मिले, फिर मुझे इतला दी कि उन्होंने रेचल से शादी कर ली है। एम्ब्रोस ने अपने खत में लिखा था कि रेचल मेरी जगह कभी ना ले सकेगी। वो मुझसे मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे। मैंने इस खबर से उदासी महसूस की। निक कैंडल, जो मेरे और एम्ब्रोस के बुजुर्ग थे, उन्हें शादी का बताया तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अब मुझे अलहदा घर में रहना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एम्ब्रोस अपनी बीवी और बच्चों के साथ उस हवेली में रहेंगे जहां मैं और एम्ब्रोस ने जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। निक कैंडल की बेटी लुइस भी शादी का सुनकर खुश थी और हवेली में नए पर्दे और नए साजो सामान का सोच रही थी। हकीकत में मुझे रेचल से हसद हो रहा था। एम्ब्रोस मेरे थे और अब रेचल इस घर में रहेगी और मुझे जाना पड़ेगा। वो एम्ब्रोस की अपनी थी और मैं गैर। मैं अपने जहन में उसकी तस्वीरें बनाता, बुरी तस्वीरें। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि एम्ब्रोस काफी अरसे वापस ना आए। वो वहाँ खुश थे, फिर एक दिन उनका खत मिला जिससे परेशानी नजर आती थी। फिलिप, मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा है, पहले ये कभी नहीं हुआ था। सूरज की रोशनी मेरे सर दर्द में इजाफा करती है। फिलिप, मुझे तुम बहुत याद आ रहे हो, काश हम करीब होते और देर तक बातें करते। मैं सख्त परेशान था। निक कैंडल को ये खत दिखाया, उन्होंने कहा कि एम्ब्रोस के वालिद को भी दिमागी बीमारी थी, शायद एम्ब्रोस भी वैसी ही बीमारी में मुब्तला हो गए हों। मैंने फौरन इटली जाने का इरादा किया, जुलाई में सफर शुरू किया, अगस्त में इटली पहुंच गया। रेचल के घर विला सांगलेटी में मुलाजिम को जब मालूम हुआ कि एम्ब्रोस का रिश्तेदार हूं, तो उसने बताया कि एम्ब्रोस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनकी बीवी वहां से जा चुकी हैं। आए, मैं आपको एम्ब्रोस का कमरा दिखाऊं। मेरे दिमाग की अजीब हालत थी, मेरे प्यारे एम्ब्रोस मुझे छोड़कर चले गए। सांगलेटी का खूबसूरत माहौल, बाग, फव्वारा, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुलाजिम ने बताया आखिरी वक्त में उन्हें बुखार था, सख्त बुखार, शदीद सर दर्द, शायद वो पागल हो चुके थे। बुखार और शदीद सर दर्द से बुलंद आवाज में चीखते, डॉक्टरों ने इलाज किया मगर बेसूद, मगर मरने के बाद पुरसकून लग रहे थे। उनका सामान मालकन साथ ले गई हैं। रेनॉल्डी रेचल की जायदाद की देखभाल करते थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने बताया कि रेचल शोहर की वफात पर परेशान थीं, इसीलिए वहां से चली गईं। एम्ब्रोस के दिमाग में रसूली थी, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया। निक कैंडल के पास वसीयत भेज दी गई है, बीमारी की वजह से जहनी हालत उनकी खराब थी, इसीलिए शायद रेचल को अपना दुश्मन समझते रहे। मुझे अफसोस भी था और गुस्सा भी, मेरे प्यारे एम्ब्रोस मर गए और रेचल कुछ भी ना कर सकी। क्या उसकी वजह से एम्ब्रोस मरे? वापस इंग्लैंड आया तो मालूम हुआ कि 25 साल की उम्र में तमाम जायदाद का मैं मालिक हो जाऊंगा। जब तक निक कैंडल को जायदाद अमानतन दे दी गई थी, रेचल को जायदाद नहीं दी गई थी। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि मेरी कजन रेचल वहां आ रही है। मैं खुद भी उससे मिलने का ख्वाहिशमंद था। मेरे प्यारे एम्ब्रोस की मौत की वजह, कजन रेचल वहां आ रही थी। मैंने सोचा उससे अच्छे तरीके से मिलूंगा, फिर एम्ब्रोस की मौत की वजह मालूम करने की कोशिश करूंगा। मैंने एम्ब्रोस की तस्वीर की तरफ नजर डाली, वो बिल्कुल मेरी तरह के लग रहे थे। कजन रेचल अपने साथ एम्ब्रोस का सामान लाई थी। मैं देर तक इधर उधर घूमता रहा, थक गया तो वापस हवेली आया, रेचल के कमरे में गया। अंदर आ जाएं, मैं थकी हुई थी इसलिए नीचे नहीं आई। शुक्रिया आपने मुझे यहां बुलाया। यहां आते हुए अजीब ऐसा साथ थे, एम्ब्रोस और मैं अक्सर यहां की बातें करते, वो मुझे बागात के बारे में बताते। शायद ये वही कमरा होता जहां हम रहते। चाय आ गई, रेचल ने पूछा कितनी चीनी, बहुत खूबसूरत बर्तन है, अगर आप चाहें तो सिगरेट पी सकते हैं। मगर ख्वातीन अमूमन पसंद नहीं करती। नहीं, आप पी सकते हैं, आतिशदान से सिगरेट जला लें। मैं सिगरेट पीते हुए सोच रहा था कि ये मेरी सोचों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कमजोर औरत, ये एम्ब्रोस को कैसे मार सकती थी? सुबह उसने बाग में उन पौधों को लगाना शुरू किया जो एम्ब्रोस ने खरीदे थे। फिलिप, मेरी पहली शादी हुई तो मैं खुश ना थी, इसलिए बाग और पौधों में सुकून तलाश किया। एम्ब्रोस से दूसरी शादी थी, खुश थी मगर वो ना रहे। मैंने उसे खत के बारे में बताया, वो बहुत परेशान हो गई। कितनी पतली दुबली थी वो, मगर आंखें किस कदर बड़ी। बोली, खत में मेरे बारे में बुराइयां लिखी हैं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैंने कहा, पहले मैं आपसे नफरत करता था मगर आपसे मिलने के बाद सोच तब्दील हो गई। वो रो रही थी। देखो फिलिप, उन्होंने मुझे पसंद किया, बहुत पसंद किया, फिर दिमाग की बीमारी की वजह से परेशान रहने लगे। मगर एक और वजह भी थी, तुम, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, मुझसे भी ज्यादा। मैंने कजन रेचल से कहा, लोग बुरा मनाएंगे, आप यहां से ना जाएं, बल्कि बाग को आपकी जरूरत है।
कहने लगी, तुम बिल्कुल एम्ब्रोस की तरह हो।
कितने गौर से वो मेरी आंखों को देख रही थी, शायद मेरे दिलो दिमाग की सोचें पढ़ रही थी।
लोग रेचल से मिलते और उसकी तारीफ करते, मगर लुईस रेचल को पसंद ना करती।
रेचल समझ रही थी कि मैं लुईस से शादी करूंगा। मैंने कहा कि मेरा किसी से भी शादी का इरादा नहीं।
मैंने रेचल से एक बार फिर कहा कि उसे यहाँ रहना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, यहाँ करने के बहुत से काम हैं जिनसे वो मसरूफ रह सकती है।
रेचल ने इटली से बहुत से पौधे मंगवाए और बाग में खूबसूरती से लगवाए।
मेरा इरादा था कि उन्हें कुछ रकम दी जाए।
निक कैंडल से दरख्वास्त की कि वो रकम रेचल को दें, मगर मेरा ना बताएं।
मगर रेचल को इस बात का इल्म हो गया, सख्त नाराज हुई।
मैंने कहा, अगर एम्ब्रोस जिंदा होते तो क्या आपको रकम ना देते?
नाराजगी खत्म हो गई, अब वो रो रही थी।
दूसरे दिन उसने गुस्सा करने की माफी मांगी और शुक्रिया अदा किया।
रकम मैंने ले तो ली, मगर मैं जल्द वापस जाना चाहती हूँ।
अगर एम्ब्रोस जिंदा होते तो क्या आपको वापस जाने देते?
वो एहसान मंद थी। ठीक है, मैं कुछ अरसे और यहाँ रहूंगी।
मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखा, दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा, प्यार किया और चली गई।
मेरी ऐसी हालत थी जैसे ख्वाब देख रहा हूँ।
बाहर गया तो रेचल के लिखे गए दो खत नजर आए। एक निक कैंडल को लिखा गया था, जबकि दूसरा इटली भेजा गया था रॉयनाल्डी के नाम।
मैं सोच रहा था रेचल ने खत में क्या लिखा होगा। महीने गुजरते रहे, रेचल को सब पसंद कर रहे थे।
मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो वहां है।
फिर एक रोज एम्ब्रोस का सामान खोला गया।
वो मेरे कंधे पर सर रख कर रो रही थी।
फिलिप, हम दोनों उसे चाहते थे।
एम्ब्रोस की एक किताब से कागज गिरा।
एम्ब्रोस का खत था जिसमें रेचल की फजूल खर्चियों का तस्करा था।
रेचल ने खत पढ़ना चाहा, मगर मैंने आग में जला दिया।
मैं जानता था कि वो वाकई फजूल खर्च है।
नए पर्दे, नए कपड़े, कीमती चीजों की खरीदारी।
मैंने भी उसे कहा कि इस कदर महंगी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, तो उसने हंसकर बात टाल दी।
रेचल ने बताया कि शादी के कुछ अरसे तक एम्ब्रोस बहुत खुश रहे, फिर बीमार होने के बाद कंजूसी शुरू कर दी।
मैंने रकम रेनॉल्डी से लेकर अखराजात पूरे किए तो सख्त गुस्से हुए, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अब वो घर में ना आए।
वो सख्त तकलीफ में भी थे और परेशान भी।
सख्त सरदर्द होता था उन्हें।
आदमी किस कदर तब्दील हो जाते हैं।
फिलिप, मुझे डर है तुम भी एक रोज कहीं तब्दील ना हो जाओ।
नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बोला।
एम्ब्रोस, मैं और रेचल, आप, हम तीनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
मैं महसूस कर रहा था कि रेचल मुझे अच्छी लगने लगी है।
मैं उससे मोहब्बत कर रहा था और वो एम्ब्रोस की तारीफें कर रही थी।
एम्ब्रोस से हसद महसूस हुआ। पहली मर्तबा कोई औरत इस घर में आई थी। उसके साथ रहना, उससे बातें करना किस कदर अच्छा लगता था।
बल्कि जो चीजें पहले बुरी लगती थीं, उसके पास होने पर वो भी अच्छी लगने लगती।
जब वो आती तो हर तरफ खुशियां बिखर जाती और उसके जाने पर उदासी छाने लगती।
मैं सोचता, हसीन रेचल अगर चली गई तो मैं क्या करूंगा?
मेरी ख्वाहिश थी कि उसे खुश करूं, कोई खास तोहफा दूं।
क्रिसमस नजदीक थी।
क्या खानदानी जेवर जो बैंक में रखे हैं उसे तोहफे में दे दूं?
मगर वो तो कुछ माह बाद, मेरी सालगिरह के बाद मेरी मलकियत होने थे।
मेरी माँ ने शादी के रोज वो पहने थे और मेरी ख्वाहिश थी कि अब रेचल वो पहने।
बैंक से अपनी जमानत पर वो घर ले आया।
क्रिसमस की दावत में सब लोगों को बुलाया
और अकेले में उसे वो तोहफे में दे दिए।
वो इतनी खुश हुई कि जेवर पहनकर मेरे पास आई, कुछ देर मुस्कुराती नजरों से मुझे देखती रही, फिर प्यार किया। मैं जितना खुश था वो मुझे ही मालूम था, लगता था नशे में हूं। रेचल मेरे साथ थी और तमाम लोग हमें देख रहे थे। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। दावत के बाद निक कैंडल ने एतराज किया कि मुझे जेवर बैंक से निकलवा कर रेचल को नहीं देने चाहिए थे। दरअसल उसे बैंक से इतला मिली थी कि रेचल बहुत ज्यादा रकम वहां से निकलवा कर खर्च भी कर रही है और इटली भी भिजवा रही है। मेरे ऊपर इश्क का भूत सवार था। निक कैंडल से बोला, आपको मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो बोले, वो जेवर अभी तुम्हारी मलकियत नहीं, मुझे अभी वापस करो। रेचल ने ये बात सुन ली और जेवर उन्हें वापस कर दिए। रेचल मुझे खुश करना चाहती थी, मगर मेरे दिल का हाल उसे शायद मालूम ना था कि मैंने जेवर उसे क्यों दिए थे। मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम दुनिया की दौलत उसे देकर उसकी मोहब्बत हासिल करूं। अगरचे मुझे एक और खत मिला जो एम्ब्रोज ने मौत से चंद माह पहले लिखा था। एम्ब्रोज बाप बना मगर बच्चा फौत हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि रेचल अब कभी माँ नहीं बनेगी। उसकी फजूल खर्चियां, राइनाल्डी पर शक कि वो और रेचल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अपने शदीद सरदर्द के बारे में लिखा और इस शक का भी इजहार किया कि रेचल और राइनाल्डी मिलकर उसे मारना चाहते हैं और जहर दे रहे हैं, इसीलिए अपनी जायदाद रेचल को देने की वसीयत लिखने से इनकार करना। मैंने सब कुछ पढ़ा मगर दिमाग मोहब्बत के नशे में रेचल के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार ना था। काश ये खत मुझे ना मिलता। मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम दुनिया रेचल के हवाले कर दूं। चंद माह बाद तमाम जायदाद का मैं मालिक हो जाऊंगा और फिर अपनी जायदाद रेचल के नाम कर दूंगा। और ऐसा ही किया, मगर वकील के कहने पर यह भी लिखवा दिया कि अगर वो किसी और से शादी करेगी तो जायदाद वापस मेरी मलकियत में आ जाएगी। फिर एक रोज घर में राइनाल्डी नजर आया। वो दोनों अकेले में देर तक बातें करते रहे। उनके हंसने की आवाजें मेरे दिमाग में तूफान बरपा कर देती। रेचल ने ये बात महसूस की और कहा कि वो मेरा पुराना दोस्त है, मगर मैं उसे बर्दाश्त ना कर सका और कह दिया कि वो यहां से चला जाए, और वो चला गया। मेरा गुस्सा कम हुआ और सोचा कि जायदाद अपने नाम देखकर रेचल की मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। निक कैंडल को शायद मेरे जज्बात का इल्म हो चुका था। उसने मुझे कहा कि रेचल मेरे लिए अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। सालगिरह का दिन आ गया, मगर कुदरत मेरे साथ मजाक कर रही थी। अप्रैल फूल यकम अप्रैल को मनाया जाता है और यही मेरी सालगिरह का दिन था। मैं अपने तमाम जेवर और जायदाद अप्रैल फूल के दिन रेचल के हवाले कर रहा था। वो भी मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थी। मैंने अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस किया। दूसरे दिन वो बगैर बताए घर से चली गई, काफी देर बाहर रही। वापस आई तो बोली, फिलिप तुम्हें लुइस से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और बोला, रेचल क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ देर हैरान परेशान मुझे देखती रही, फिर बोली, बेवकूफाना बात ना करो फिलिप, मगर कल रात की मोहब्बत, वो उन तोहफों का शुक्रिया था जो तुमने मुझे दिए, जायदाद और जेवर का शुक्रिया। मैं हैरान परेशान खड़ा था। वो चली गई। अप्रैल फूल के दिन मुझे बेवकूफ बनाया गया था। लुइस को मेरी हालत का इल्म हुआ तो मेरी मदद करने का फैसला किया। मुझे कहा कि रेचल सिर्फ मेरी दौलत हासिल करना चाहती थी। अब्बू से पूछने भी आई थी कि क्या अब वो वाकई तमाम जायदाद की मालिक है। लुइस चली गई। रेचल का रवैया मेरे साथ अब दोस्ताना ना था। दूर दूर रहती, एक लड़की को भी अपने साथ रख लिया। मेरी हालत खराब हो रही थी, दिमाग में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। कमजोरी महसूस की और बेहोश हो गया। होश आया, देखा रेचल करीब है, फिर बेहोश हो गया। फिर होश आया तो पता चला कि 5 हफ्ते बेहोश रहा। मौत के मुंह से वापस आया हूं। उसने मुझे बताया कि उसकी बदजायका दवाओं ने मेरी जान बचाई। उसने वो दवाई मुझे फिर पिलाई। हम दोनों एक मर्तबा फिर करीब थे। कुछ दिन बाद चलने के काबिल हुआ तो देखा कि बाग में वो पौधे मौजूद थे जो मैंने इटली में रेचल के बाग में देखे थे। एक जगह बहुत गहरा गड़ा खोदा गया था जहां पौधे लगाए जाने थे। मुझे बताया गया कि रेचल वापस इटली जा रही है। मैंने उससे कहा कि हम तो मियाँ बीवी हैं, तुम अकेले कैसे जा सकती हो? हमारी शादी कब हुई? वो बोली, हाँ जरूर मैंने ख्वाब देखा होगा। मैंने उससे इल्तजाए की कि मुझे छोड़कर ना जाए। फिर दिमाग में शदीद दर्द हुआ और बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद सेहत कुछ बेहतर हुई, मगर शदीद सरदर्द महसूस होता। रेचल बहुत देर तक घर से बाहर रहती। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वो राइनाल्डी से मिल रही है। जब घर में हम दोनों मिले तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ जाती है। ठीक है, मैं राइनाल्डी से मिलती हूँ, बल्कि 2 हफ्तों से मुसलसल मिल रही हूँ। वो यहाँ क्यों आया? मैंने उसे बुलाया। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके मशवरों की ज़रूरत है। तुम उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसीलिए वो दूसरी जगह ठहरा हुआ है। किस किस्म के मशवरे तुम उससे लेती हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? बच्चों की तरह सवाल ना करो, समझने की कोशिश करो फ्लिप। वो परेशान नजर आ रही थी, शायद महसूस कर चुकी थी कि वो गलती पर है। तुम 2 हफ्तों से मुझसे झूठ बोलकर उससे मुलाकातें कर रही हो और कहती हो कि मैं समझने की कोशिश ना करूं। मैंने झूठ बोला तो सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि ना जाने क्यों तुम उससे नफरत करते हो और दोबारा बीमार भी हो सकते थे। पहले एम्ब्रोज ने ऐसा किया और अब दोबारा वही कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं रिनाल्डी से नफरत करता हूं तो उसकी वजह है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये बहुत पहले की बात है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरे अच्छे बुरे वक्त का साथी, मुखलिस इंसान, सच्चे मशवरे देने वाला। उसे मेरी कमजोरियां भी मालूम है, मगर कभी तनकीद नहीं करता। उसने हमेशा बुरे वक्त में मेरी मदद की। मैंने चीखते हुए कहा, उसे कहो वापस चला जाए हमेशा के लिए। जब उसका दिल चाहेगा जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं अपनी मर्जी से, बल्कि मैं उसे अपनी हिफाजत के लिए यहां भी बुला सकती हूं। ऐसी जुर्रत कभी ना करना रेचल। जुर्रत की क्या बात है, क्या ये घर मेरी मलकियत नहीं? मैं उस औरत से मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर वो रोने लगी। मैं दूसरी मर्तबा तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूं। आईने में मुझे अपना अक्स नजर आया। ये मैं था या एम्ब्रोज? मगर वो औरत तो दोनों को शिकस्त दे चुकी थी। ठीक है, मगर रिनाल्डी से छुपकर मुलाकातें ना करो, मिलना हो तो यहां बुलाओ और मिलो। मैं ये कहकर वहां से चला गया। उसने वाकई रिनाल्डी को बुला लिया। वो लाइब्रेरी में मुझे मिला और हाथ मिलाया। आप पहले से बेहतर हैं। रेचल को आपकी बहुत फिक्र थी, वो मुस्कुरा रहा था। रेचल ने घर को ज्यादा तब्दील नहीं किया, हाँ बाग में ज्यादा काम किया है। मैं उसे रुपए पैसे के मामले में मदद देता हूँ, जल्द ही आपकी जायदाद में बहुत इजाफा हो जाएगा। मैंने उससे पूछा, आप वापस इटली कब जा रहे हैं? जब रेचल कहेंगी, वो भी जाने का इरादा रखती हैं। शुक्र है आपने उन्हें रोका नहीं। उन्हें तजर्बा हासिल हो रहा है, पहले जज्बात से फैसले करती थीं, अब हकीकत को सामने रखती हैं। बाहर में इटली जरूर आएं, खुश हो जाएंगे। रेचल आ गई, दोनों ने हेलो कहा। मुझे खाना जहर लग रहा था। बाहर चला गया, उनकी आवाजें आती रहीं, भयानक आवाजें। रात को रेचल कमरे में आई। आपका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं। अगर आपको मालूम हो कि वो आपकी कितनी इज्जत करता है तो आप ऐसा रवैया ना रखते। वो जल्दी में लगती थी ये कहकर चली गई। रात को मुझे सख्त बुखार चढ़ा। सुबह खड़ा होना भी मुश्किल था। सर में शदीद दर्द था। डॉक्टर आया, दवाएं लिखी और चला गया। रेचल आई मगर बेपरवाही नुमाया थी। दवाई पिलाई। थोड़ी देर बाद मुझे सख्त प्यास लगी मगर उससे पानी मांगने की हिम्मत ना हो सकी। उसके हाथ में किताब थी मगर सोच कहीं और। मैंने कहा, आप चाहें तो यहां से चली जाएं। कहाँ? रिनाल्डी से मिलने। वो तो चले गए हैं। हम खतूत से राबता रख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा चले जाएं। मैंने दिल में शुक्र किया कि वो चला गया है। अगर आपका रवैया अच्छा होता तो हमारे ये आखिरी दिन अच्छे गुजर जाते। मेरा रवैया खराब था या आपका? मैंने उसका हाथ थाम लिया। रात को ख्वाब में एम्ब्रोस के लिखे हुए खत पढ़ता रहा। जागा और उस जगह गया जहां उसका खत छुपाया था। निकाला और पढ़ना शुरू किया। रेचल का रुझान इस शख्स रिनाल्डी जिसका नाम है की तरफ बहुत ज्यादा है। उसका असर भी रेचल पर बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है इन दोनों में बरसों पुरानी मोहब्बत है। मेरे पास सबूत भी हैं कि रेचल उसे रुपए भी देती है। मुझे देखकर वो चुप हो जाते हैं, न जाने क्या मंसूबे बना रहे हैं। मुझसे वसीयत के बारे में भी पूछा गया मगर मैं उसे जायदाद नहीं दूंगा। फिलिप, ये तुम्हारी होगी। रेचल की आंखों से अजनबियत नजर आती है। खौफ ज़दा लगती है मगर किससे? मुझे बुखार हो रहा है। बार बार शदीद सर दर्द के दौरे भी पड़ रहे हैं। खड़ा भी नहीं हो सकता। सोना चाहता हूँ। फिलिप, मेरे प्यारे फिलिप, दुनिया में सबसे अजीज फिलिप, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? अगर मुमकिन हो तो मेरे पास आ जाओ। किसी से कुछ ना कहो। मुझे भी जवाब ना दो। मुझे जहर दिया जा रहा है। मुझे बचा लो फिलिप, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा एम्ब्रोस। मैंने खत फाड़कर फेंक दिया। वापस घर आया। रिनाल्डी का खत रेचल के लिए मौजूद था। क्या वो मोहब्बत नामा था? रात को खामोशी से रेचल के कमरे में गया, तलाशी ली। मुझे तलाश थी रिनाल्डी के मोहब्बत नामों की मगर एक लिफाफे में वो चीज मौजूद थी जिसका एम्ब्रोस को खौफ था। मेरी और एम्ब्रोस की बीमारी की वजह, जहरीले बीज। ये बीज इटली के बाग में भी मैंने देखे थे और रेचल ने यहाँ भी वो पौधे लगवाए जिनसे ये जहरीले बीज उगते थे। एम्ब्रोस का शक बिल्कुल दुरुस्त था कि उसे जहर दिया जा रहा है और मुझे अपनी बीमारी की वजह भी मिल चुकी थी। मेरा भी वही अंजाम होने वाला था जो एम्ब्रोस का हुआ था। एक मुलाजिम आया और बताया कि नए बाग में पौधे लगाने के लिए जो गढ़ा खोदा गया है उसके ऊपर आर्जी तौर पर तख्ते लगाए गए हैं। वहां किसी को ना जाने दिया जाए वरना अनजाने में वो गहरे घड़े में गिर सकता है। कुछ देर बाद लुईस भी वहां आ गई। रेचल ने सबकी दावत की, सबसे बहुत मोहब्बत से पेश आई। मुझे उन्हीं बीजों की दवाई दी। मैंने पीने से इनकार कर दिया। रेचल ने कहा, लुईस और आप बातें करें, मैं बाग में सैर करना चाहती हूँ। वो चली गई। मैं लुईस को लेकर रेचल के कमरे में गया, तलाशी ली। एक कागज में बीजों के बारे में मालूमात थी मगर जहर का कोई जिक्र ना था। रिनाल्डी का खत मिला जिसमें लिखा था कि इटली में घर रेचल के लिए तैयार है, जब भी आना चाहे आ जाए और अगर मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मुझे भी साथ लेती आए, अगरचे वो इस चीज का मशवरा नहीं देगा। मैं तेजी से तलाश कर रहा था और सबूत मुझे नहीं मिल रहा था। और तलाशी ली तो एम्ब्रोस की एक तस्वीर मिली जिसमें चेहरे की थकन नुमाया थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, रेचल के लिए सिर्फ अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए। बैंक की रसीद मिली जिससे मालूम होता था कि जेवर बैंक में वापस रखवा दिए गए हैं। लुईस बोली, फिलिप, यहां तो कोई सबूत नहीं कि तुम्हें वाकई जहर दिया जा रहा है। ख्वाह मुख्वाह शक नहीं करना चाहिए था। हम एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने कहा। हम बाहर गए, आधा घंटा गुजर चुका था, रेचल वापस नहीं आई थी। लुईस, घंटी को बजाओ, हमें लोगों की जरूरत है। ये कहकर मैं बाग की तरफ भागा। जो गहरा घड़ा खोदा गया था उसके आर्जी तख्ते ईंटों समेत नीचे गिरे हुए थे, जिनके साथ रेचल सख्त जख्मी हालत में मौजूद थी। मैं जल्दी से गड्ढे में उतरा और उसके सर्द हाथों को थाम लिया। रेचल, उसने आंखें खोली, तकलीफ चेहरे से नुमाया थी। मैं समझा मुझे पहचान रही है, मगर एक मर्तबा फिर मैं रेचल को समझने में गलती कर चुका था, क्योंकि उसने मुझे कहा एम्ब्रोज और आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ मेरे हाथों में थे, मगर वो मर चुकी थी। www.sayyedirfanali.com